एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी साहित्य के एक बहुत ही कह सकते हैं दिग्गज लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता विलियम फॉकनर के उपन्यास एज आई ले डाइंग पर।
जी बिल्कुल, फॉकनर का नाम आते ही उनकी वो खास शैली याद आती है।
हाँ, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली बात है ना, मतलब किरदारों के मन की उलझने।
जैसे वो सोच रहे हैं वैसे ही पन्नों पर उतार देना, कोई लाग लपेट नहीं।
और वो समय का आगे पीछे जाना,
और लंबे लंबे वाक्य जो आपको कहानी में एकदम डुबो देते हैं।
उनका वो युकना पातापा काउंटी भी तो है।
हाँ, वो काल्पनिक जगह जहाँ उनकी ज्यादातर कहानियां ढटती हैं, दक्षिणी अमेरिका का एक पूरा नक्शा खींच देते हैं वो।
सही कहा। तो ये उपन्यास एज आई ले डाइंग 1930 में आया और ये फॉकनर की इसी जटिल शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है।
हाँ, और कहानी का जो आधार है वो सुनने में बहुत सीधा लगता है। एक परिवार है, माँ मर रही है,
और उसकी आखिरी इच्छा है कि उसे 40 मील दूर उसके मायके जेफरसन में दफनाया जाए।
बस। लेकिन फॉकनर इसी सीधी सी लगने वाली बात को लेकर इंसानी रिश्तों, स्वार्थ, दुख, इन सब की इतनी गहरी पड़ताल करते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं।
बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर की तहों में उतरेंगे, किरदारों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कहानी आज भी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है।
तो कहानी शुरू होती है एडी बंड्रिन से। वो मृत्युशैया पर है और बाहर उनका बेटा कैश
काबूत मना रहा है वही उनकी खिड़की के पास।
हाँ, ये शुरू से ही एक अजीब सा तनाव पैदा कर देता है।
हाँ, अंदर मौत का इंतजार और बाहर ताबूत बनने की आवाजें।
और फिर परिवार फैसला करता है कि माँ की ये इच्छा पूरी करनी है। 40 मील का सफर, वो भी उस जमाने की गाड़ी में एक लाश के साथ।
यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में माँ के लिए प्यार और सम्मान है
या फिर ये सिर्फ एक मुखौटा है जिसके पीछे सबके अपने अपने एजेंडा हैं, अपने स्वार्थ हैं।
इसे कई बार उल्टी वीर गाथा या इन्वर्टेड हीरोइक क्वेस्ट भी कहते हैं, मतलब हीरो जैसा कुछ नहीं है इसमें।
बिल्कुल, संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं है, जैसे गर्मी, बाढ़, आग, संघर्ष तो परिवार के अंदर ही बहुत गहरा है।
बिल्कुल।
किरदारों की बात करें तो सबसे पहले पिता एंस बंड्रिन।
ओह एंस, बड़ा ही अजीब किरदार है, आलसी, हमेशा शिकायतें। उनका तकिया कलाम है, पसीना आया तो मर जाऊंगा।
हाँ, और वो माँ से किए वादे का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। असल में तो उन्हें जेफरसन जाकर नए नकली दांत लगवाने हैं।
पूरी यात्रा उनके लिए बस इसी मकसद का एक जरिया है और अंत में वो कामयाब भी होते हैं बड़े विभत्स तरीके से।
दूसरी तरफ है बच्चे, सबसे बड़े कैश।
कैश जो बड़ा ही है, बहुत शांत, अपना काम सटीकता से करने वाला, उसके लिए हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। ताबूत भी वो बहुत नाप तोल कर बनाता है। हाँ, उसके अध्याय भी अक्सर लिस्ट जैसे होते हैं, नंबर एक, नंबर दो, जैसे वो हर चीज को व्यवस्थित रखना चाहता हो।
लेकिन सफर में उसका पैर टूट जाता है नदी पार करते हुए, और फिर परिवार वाले वो सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देते हैं।
उफ, सोचकर ही अजीब लगता है, कितनी लापरवाही और क्रूरता भी।
जी, और कैश वो भयानक दर्द चुपचाप सहता है। शायद व्यवस्था बनाए रखने की उसकी जो जिद है वो उसे ये सब सहने पर मजबूर करती है।
फिर है डाल, दूसरा बेटा, ये शायद सबसे जटिल किरदार है।
हाँ, बहुत संवेदनशील, सोचने वाला, लगभग कवि जैसा। कहानी का ज्यादातर हिस्सा उसी के नजरिए से पता चलता है।
और वो चीजों को बहुत साफ देख पाता है ना,
परिवार का ढोंग, इस सफर की बेतुकीपन।
बिल्कुल, जैसे उसे कोई दिव्य दृष्टि मिली हो। वो खुद अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता है, मैं क्या हूं, मैं हूं भी या नहीं।
और यही समझ शायद उसे महंगी पड़ती है, यात्रा का तनाव, माँ के सड़ते शरीर की गंध।
हाँ, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है, खलियान में आग लगा देता है
जी,
जहां ताबूत रखा होता है। शायद वो इस सारे नाटक को, इस दुर्गंध को खत्म करना चाहता था, एक तरह से माँ को मुक्ति देना चाहता था।
लेकिन परिवार इसे पागलपन समझता है और उसे पागलखाने भेज देते हैं।
कि सबसे बड़ी विडंबना है, जो सच देख रहा है उसे ही पागल करार दिया जाता है।
जबकि बाकी परिवार जो एक सड़ते हुए शव को ढो रहा है अपने अपने स्वार्थ के लिए, वो सामान्य माना जाता है।
सही कहा, समाज की नजर में समझदारी क्या है, ये सवाल खड़ा होता है।
फिर है ज्वेल, तीसरा बेटा, डाल से एकदम अलग।
बिल्कुल, वो कर्म का प्रतीक है, गुस्सैल लेकिन तुरंत एक्शन लेने वाला, भावनाओं को शब्दों से नहीं अपने कामों से दिखाता है।
और उसका माँ के प्रति जो लगाव है वो भी बहुत तीव्र है। बाद में पता चलता है कि वो एडी और रेवरेंड बिटफील्ड का बेटा है।
हाँ, ये एक रहस्य जो कहानी में खुलता है, उसका घोड़ा उसके लिए बहुत कीमती है, उसकी अपनी पहचान जैसा,
जिसे उसने रातें जागकर मेहनत करके कमाया था, और वही घोड़ा उसे बेचना पड़ता है सफर जारी रखने के लिए।
लेकिन यात्रा के दौरान वही सबसे ज्यादा काम आता है, ताबूत को नदी से बचाता है, आग से बचाता है।
हाँ, वो एक तरह का उद्धारकर्ता बन जाता है मुश्किल मौकों पर। एडी के नजर में भी वो उसका उद्धार था।
अब बात करते इकलौती बेटी ड्यूई डेल की।
ड्यूई डेल की कहानी बहुत बहुत दुखद है। 17 साल की लड़की एक अनचाहे गर्भ के बोझ तले दबी हुई,
और जेफरसन जाना उसके लिए माँ की इच्छा से ज्यादा गर्भपात की दवा हासिल करने का एक जरिया है, एक उम्मीद।
उसकी पूरी यात्रा एक तरह से स्त्री शोषण और लाचारी की कहानी बन जाती है। उसके मन में बस एक ही बात घूमती रहती है।
हाँ, वो बार बार दोहराती है, मैं ईश्वर में विश्वास करती हूँ ईश्वर, जैसे खुद को दिलासा दे रही हो।
लेकिन उसे धोखा ही मिलता है। दवा की दुकान वाला क्लर्क उसका फायदा उठाता है, और फिर उसका पिता
एंस, वो उसके गर्भपात के लिए रखे $10 भी चुरा लेता है अपने दांत लगवाने के लिए।
ये दिखाता है कि वो कितनी अकेली और शक्तिहीन है। उसका भविष्य अनिश्चित रह जाता है।
और सबसे छोटा वार्डमन।
वार्डमन तो बच्चा है, वो मौत जैसी बड़ी और अमूर्त चीज को समझ नहीं पाता।
वो उसे उस मछली से जोड़ देता है जिसे उसने उसी दिन पकड़ा और काटा था जिस दिन माँ मरी।
हाँ, तो वो कहता है, मेरी माँ एक मछली है। ये पागलपन नहीं, ये एक बच्चे का तरीका है एक ऐसी चीज को समझने का जो उसकी समझ से परे है।
उसके वर्णन भी बड़े अजीब हैं, खंडित, सिर्फ एहसासों पर आधारित, जैसे गिद्धों का मंडराना या ताबूत में छेद करना।
हाँ, ताकि माँ सांस ले सके, और अनजाने में वो माँ का चेहरा खराब कर देता है। वो मासूमियत का प्रतीक है जो मौत की विभत सच्चाई का सामना कर रहा है।
तो ये परिवार इस लाश को लेकर निकलता है। सफर आसान नहीं है, भयंकर गर्मी, लाश सड़ रही है,
गिद्ध साथ चल रहे हैं, लोग उन्हें नफरत से देख रहे हैं, और एंस किसी की मदद लेने को तैयार नहीं।
पहली बड़ी मुसीबत आती है नदी पर, बाढ़ आई हुई है, पुल बह गया है।
हाँ, और सलाह के खिलाफ जाकर वो नदी पार करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी पलट जाती है, खच्चर डूब जाते हैं,
ताबूत बह जाता है जिसे ज्वेल बचाता है, कैश का पैर टूट जाता है, औजार खो जाते हैं,
सब कुछ बिखर जाता है। ये उनकी जिद और गरीबी का नतीजा है।
फिर ज्वेल का घोड़ा बिकता है, घर का सामान गिरवी रखा जाता है नए जानवर खरीदने के लिए,
और फिर वो गिलेस्पी के खलिहान में रुकते हैं। तब तक ताबूत से बदबू बर्दाश्त के बाहर हो चुकी होती है,
और यही डार आग लगा देता है।
जी, जिसे ज्वेल फिर बुझाता है और ताबूत बचाता है। लेकिन डाल का ये काम उसे परिवार की नजर में अपराधी बना देता है।
जब वो शहरों से गुजरते हैं, मॉटसन जैसे, तो लोग उन्हें देखकर घिन करते हैं।
बदबू इतनी होती है कि उन्हें शहर से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। उन्हें अछूत जैसा माना जाता है। और वहीं ड्यूई डेल के साथ वो शोषण वाली घटना होती है।
आखिरकार 9 दिन बाद ये लोग जेफरसन पहुंचते हैं। 9 दिन।
सोचे क्या हालत हुई होगी। एडी को बिना किसी रस्म, बिना सम्मान के बस दफना दिया जाता है।
और फिर चरमोत्कर्ष आता है, परिवार मिलकर डाल को पकड़ लेता है।
पागलखाने से आए लोग उसे ले जाते हैं, और डाल वो इस सब पर पागलों की तरह हंसता है। उसे शायद ही पूरी विडंबना साफ दिख रही होती है।
और जैसे ही डाल को ले जाया जाता है, एंस गायब हो जाता है,
और थोड़ी देर में लौटता है नए चमचमाते दांतों के साथ,
और एक नई पत्नी के साथ, नई मिसेस भिंडरन।
हाँ, ये अंत इस यात्रा के खोखलेपन को पूरी तरह उजागर कर देता है। जिस सम्मान और कर्तव्य की बात हो रही थी, वो असल में सिर्फ एंस के दांतों और नई पत्नी तक का सफर था।
तो ये उपन्यास हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करता है। एक तो वही भाषा बनाम कर्मों वाली बात।
हाँ,
एडी का मानना था कि शब्द खोखले हैं।
हाँ, और एंस शब्दों का खूब इस्तेमाल करता है अपना स्वार्थ छिपाने के लिए, जबकि जोल वो कर्म से अपनी बात कहता है, भले ही वो हिंसक क्यों न हो।
और डाल जो शब्दों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है, उसे पागल बना दिया जाता है।
दूसरा बड़ा मुद्दा है ये पारिवारिक कर्तव्य बनाम स्वार्थ का। क्या कोई भी रिश्ता, कोई भी काम पूरी तरह निस्वार्थ हो सकता है?
लगता तो नहीं। एंस के दांत, ड्यूई डे की जरूरत, कैश की कारीगरी की इच्छा, डाल की बेचैनी, हर कोई कुछ न कुछ पाने की कोशिश में है।
और समझदारी और पागलपन के बीच की धुंधली रेखा। डाल को पागल कहा जाता है, लेकिन क्या उसका काम वाकई पागलपन था,
या शायद उस स्थिति में सबसे तर्कसंगत काम वही था?
और बाकी परिवार जो लाश ढो रहा है, वो सामान्य है? ये समाज की बनाई परिभाषाओं पर सवाल है।
गरीबी का असर भी साफ दिखता है, कैसे वो लोगों के विकल्प छीन लेती है, उन्हें अमानवीय स्थितियों में डाल देती है। कैश का वो सीमेंट वाला पैर,
जी, और समाज का तिरस्कार भी शायद उनकी गरीबी की वजह से और बढ़ जाता है।
और मौत? फॉकनर मौत को बहुत ही विभत्स, गंदी, विघटनकारी चीज की तरह दिखाते हैं। एडी का सड़ता शरीर उसका प्रतीक है।
इसमें कोई रोमांस नहीं है, ये बस एक हकीकत है जिससे हर किरदार अपने अपने तरीके से जूझ रहा है।
फॉकनर की शैली की बात करें तो वो चेतना प्रवाह और कई किरदारों 15 के नजरिए से कहानी कहना।
हाँ, 59 छोटे छोटे अध्याय हैं, हर कोई अपनी बात कह रहा है। इससे हमें हर किरदार के मन की गहराई में झांकने का मौका मिलता है।
प्रतीक भी बहुत है, ताबूत है, ज्वेल का घोड़ा है, वाडामैन की मछली, कैश के औजार,
ये सब कहानी को और पढ़ते देते हैं और विडंबना तो भरी पड़ी है शीर्षक से लेकर अंत तक।
ये दक्षिणी गौतिक शैली का भी एक उदाहरण है जिसमें वो सड़ता शरीर, गिद्ध, काला हास्य सब शामिल हैं।
इसे पढ़ना वाकई एक तीव्र अनुभव है। कभी आपको किरदारों पर दया आएगी, कभी उनसे घिन आएगी।
हाँ, उनके मूर्खता पर, क्रूरता पर गुस्सा भी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दुख से जुड़ाव भी महसूस होता है।
ये पाठक से बहुत कुछ मांगती है किताब। आपको ध्यान देना पड़ता है, चीजों को जोड़ना पड़ता है।
अंत में ये कहानी इंसान की अजीब सी लचीलता और साथ ही उसकी बेतुकी हरकतों पर एक टिप्पणी जैसी लगती है।
ये सवाल छोड़ जाती है कि हमारे कामों के पीछे असली वजह क्या होती है, परिवार क्या है, ताकत या बोझ,
और इस तर्कहीन दुनिया को हम कैसे समझें। ये वीरता, समझदारी, प्यार, इन सब पर सवाल उठाती है
और शायद ये बताती है कि असली संघर्ष बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारे मन में, हमारे रिश्तों में।
शायद ये कहानी हमें मानवीय जटिलता की एक ऐसी झलक देती है जहां कर्तव्य और स्वार्थ, प्रेम और क्रूरता, समझदारी और पागलपन एक साथ अविभाज्य रूप से मौजूद रहते हैं।
हाँ, ये यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे सामाजिक मुखौटों के पीछे कौन सी कच्ची, अराजक और अक्सर विरोधाभासी इच्छाएं हमें चलाती हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम खुद अपने जीवन की यात्राओं में कितने ईमानदार हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।